सब तसव्वुर में अपने आप को रखें। निफाक से जान छुड़ाई सबक का शुरू, ईमान के रास्ते की मुश्किलात खुशी से सही, जिंदगी का मिशन बना लिया या मरूना बिल मारूफ को और यनहौना अनिल मुनकर को, पर्सनली युकीमूना सलात पे कायम रहे, अल्लाह के रास्ते में देते रहे यूतूना ज़कात, और खुशी से अमली जिंदगी में युतीउनल्लाह व रसूलहू पे अमल करते रहे, तो आप देखिए जरा वो कदर वाला रब आपको क्या दे रहा है। सबसे पहले तो पढ़ लिए ना आयत के एंड पे सयरहमुहुमुल्लाह, वल्लाही अल्लाह का रहम इतनी बड़ी चीज है, दुखों और बीमारियों और तकलीफों से दूर करती है। कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स था ऑनलाइन पे जो क्लास होती है, उसमें पहला पारा पूरा हुआ है। वीकेंड पे आपको बताया था रिसेंटली एक नई क्लास शुरू हुई है, अभी भी अगर आप नहीं ज्वाइन हुए बच्चियों को बेटियों को, तो मेरा हाल है आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन है, और यहाँ सो सो के भी आप उठ जाए ना तो 2 बजे शुरू होती है। पहला पारा पूरा भी हो गया, कल रात को उसकी रिपोर्ट आई थी तो मैं पढ़ रही थी। टोटल 21 क्लासें हुई हैं, 17 लेसन उसमें पूरे हो गए, पारा पूरा हो गया, सेकंड शुरू हो गए। तो उसमें से स्टूडेंट्स अपनी शेयरिंग कर रहे थे, जैसे भी आपको इंशाल्लाह बताते हैं एंड पे, आपका भी एक फंक्शन आ रहा है। तो मुझे जो लोगों की बातें याद रही, एक स्टूडेंट थी कहती है मैं इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी, तंग आ गई थी अपने आप से, कहती सिर्फ इस एक पारे के दौरान मुझे डॉक्टर पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यकीन करें मेरा हर दिन का लोगों के साथ इंटरेक्शन है, और अक्सर लोगों के मुंह से मैं यही जुमला सुनती हूँ, कोई स्ट्रेस में था, कोई जहनी बीमारी पे, कोई जिस्मानी पे कुछ, तो मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अब समझ आया औलाए का सैया रहमहुमुल्लाह, अल्लाह रहम कर देता है बंदे के ऊपर। इस कुरान की बरकत से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, मेरे सबसे ज्यादा गुनाह होंगे आपसे ज्यादा। वल्ला ही अगर मैं आप सबको ना पढ़ा रही होती ना, तो मुझे 7 किस्म की बीमारियां तो लगी जा चुकी होती अब तक, जो अमूमन लोगों को लगी होती हैं। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह की ख़ास रहमत है, यकीन करें ये सिर्फ इस कुरान की बरकत है कि हम बीमारियों से बचे हुए। कभी डॉक्टर का मुंह देखने को दिल नहीं करता, और अल्लाह सबको निजात दे दे। आज 1 महीने की छुट्टी लेके मैं घर बैठ जाऊँ, ज़रा मैं आराम फरमा लूँ, तो उस आराम फरमाने में कितनी तकलीफ़ें आ जाएंगी। फिर आप अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये क्या, मैंने तो नहीं बीमार होना, मुझे नहीं बीमार होना, मैं इस कुरान से अपना इलाज करूंगी। आजमा के देख लें अपने रब को, ये अल्लाह का वादा। आप में से कई लोग यहाँ 20 बार इसकी शेयरिंग कर चुके हैं ना, वो नौरीन आंटी फिर बेचैन है अपनी शेयरिंग के लिए। वल्लाह ही इट्स ट्रू, ये मुसलसल डोज है ना नजर आने वाली, लेकिन आगे क्या मिलने वाला है। अब इंजॉय करिए आयत 72 को, वअदल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात, अल्लाह ने वादा किया ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से। पहले तो लफ्ज़ वादे को सोचिए, कौन कर रहा है वादा, और वमन अस्तकु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह से भी सच्चा वादा किसी का पूरा हो सकता है? अल्लाह वादे निभाता है। क्या वादा है, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन जन्नतों का जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, दूसरी नेमत। ये नहीं कि सिर्फ एक टूर करा देगा 3 दिन का, कोई एक पैकेज है हफ्ते का, नो, खालिदीन फीहा। जन्नत की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि बंदे ने जिस नेमत को एक दफ़ा देख लिया वो उससे छुड़नेगी नहीं, इतनी महरूमी नहीं है जन्नत में। सिर्फ एक नज़र दिखा दी ना आपको नेमत, क्या हो तुम्हें दिखाएं। हदीस में आता है कि बच्चे जन्नत में होंगे, माँ बाप भी होंगे, बच्चे नीचे थे, माँ बाप ऊपर हैं, माँ बाप ख्वाहिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं, अल्लाह कहेंगे ठीक है हम जाके मिले, अल्लाह कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये जुल्म है, तुमने 70वें ग्रेड की नेकियां की थी, बच्चे 45वें में बैठे हुए, तुम नीचे जाओगे, ये जुल्म है। हाँ जुल्म नहीं है, एहसान कर देते हैं, जाओ फरिश्तों इनके बच्चों को ले आओ माँ बाप से मिलवाने के लिए, वो 40th फ्लोर से उतरा के 70th फ्लोर पर लाएंगे जहाँ खूबसूरत नज़ारे हैं, मिल मिला लेंगे। तो अब अल्लाह का दूसरा कानून लागू हो जाएगा कि जिसने एक दफ़ा देख लिया वो महरूम नहीं किया जाएगा, फरिश्तों अब इन बच्चों को भी 70वें ग्रेड में डाल दो। ये है खालिदीन फीहा, दुनिया में नेमत मिल जाए साथ ही छिनने का खौफ। फिर अगली चीज, व मसाकिना तय्यिबतन फी जन्नति अदनिन, और पाकीज़ा घर होंगे, उमदा मकानात, हमेशा की जन्नत में, हमेशा की वाली जन्नत है। हम औरतों के लिए तो ये लफ्ज़ बहुत सेंटिमेंटल है, मसाकिन, घर किसकी कमज़ोरी नहीं होती, सच बताएं। आप में से कोई क्या इन 10 पारों के पढ़ने के बाद अपने घरों से बेजार हुआ? नफरत करते अपने घरों से? कभी भी नहीं, बल्कि हमारे घर तो कुरान पढ़ने के साथ साथ और खूबसूरत हो जाते हैं। बेकार चीज़ें निकलती जाती हैं और ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और वक्त में बरकत आती है। लेकिन दुनिया के घरों में कोई पता नहीं कि तजीबा पूरा है कि नहीं। कहीं ना कोई आलाइश तो होगी ना, आमेजिश तो हो सकती है ना, कहीं घर लेने में, कहीं सजाने में, कहीं सोर्स ऑफ इनकम में, और कुछ नहीं तो घर गंदा चले हो ही गया। आपको नहीं 4 दिन हफ्ते में वक्त मिलता डीप क्लीनिंग का, तो जन्नत के घर मसा की न तजीबत है, ज़ाहरी नजास्तों से भी पाक और इसी तरह से बातनी नजास्तों से भी पाक। फी जन्नत अदनिन, और जन्नत अदन के बारे में आपको पता क्या आता है? कि अल्लाह ने 3 चीज़ें अपने हाथ से बनाई हैं, उसमें एक चीज़ जन्नत अदन है। और अदन कहते हैं हमेशगी को, एवरलास्टिसिटी। बैंकरप्सी नहीं है, घर बेचने नहीं पड़ेंगे मजबूरियों के वक्त पे, और कोई आपको आपके घरों से निकाल के एक छोटी सी कब्र में नहीं डाल देगा वहाँ जाके। आज जिन घरों में हमारा दिल लगता है, आज शाम को ज़रा जाके पूछिएगा बच्चों से भी और मियाँ जी से भी कि क्या आप मुझे मेरे बैक यार्ड में भी दफन करने पे तैयार हैं? चलो बेडरूम में तो आप मुझे नहीं करेंगे, क्या घर के कोने में मुझे एक जगह दे देंगे कि मैं यहीं दफन हो जाऊं? फिर पता चलेगा इन घर वालों की मोहब्बत और घरों की। बिलीव मी, क्या मेरी और आपकी मौत का वक्त करीब नहीं हो सकता? अगर 1 हफ्ते के बाद मेरी डेथ हो जाए, मेरे पास क्या है? ये घर मुझे कुछ भी नहीं देगा। और आगे के वादे, और बार बार अल्लाह वादे की बात कर रहा है। देख, अल्लाह से सच कोई नहीं कहता, लेकिन वो हमें यकीन दिलाने के लिए कह रहा है मैंने वादा किया। और आप कहते वादा क्या होता है? कोई आपसे वादा कर ले और ज़रा से पीछे होने लगे तो आप उसको याद करवाते हैं, जी आपने वादा किया था। देखिए वादे निभाने होते हैं। और ये भी कुछ नहीं है, घर तो घर है, व रिदवान मिन अल्लाह अकबर, और अल्लाह की रज़ा तो सबसे बड़ी नेमत है। ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही तो है बहुत बड़ी कामयाबी। जन्नत की सारी नेमतें एक जगह, और जन्नत में अल्लाह की रज़ा का मिलना ये दूसरी जगह। ये जन्नत कोई ख्याली जन्नत नहीं है, तस्वुरात में नहीं बंधी हुई जन्नत, ये कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा अल्लाह ताला, कोई सब्ज़ बाग नहीं है। वल्लाह ही एक दिन आप सब जन्नत में होंगे अल्लाह के हुक्म से, अगर ईमान के तकाजे पूरे करने में मुश्किलात पे जमे रहे, अगर निफाक को पीछे करते रहे, अगर पीयर प्रेशर से उस सारे थ्रेश होल्ड को तोड़ते हुए आप आगे आ गए कि मुझे तो अपनी जन्नत चाहिए। देखिए आज अगर निज़ा की सख्ती शुरू हो जाए, मुझे पता चल जाए 1 हफ्ते के बाद मेरी मौत है, मैं इस 1 हफ्ते को कहाँ गुजारना चाहूँगी? पसंद की फिल्में देखने में, शॉपिंग में, घर साफ कर जाऊँ बच्चों को बाद में करना ना पड़े, बाद में कौन करेगा, छोड़ दे वो कर लेंगे खुद ही। मैं उस 1 हफ्ते को जहाँ गुजारना चाहूँगी ना, वहाँ अब अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि हमें से किसी को ये भी कोई नहीं पता कि 1 हफ्ता तो क्या 1 दिन भी है हमारे पास के नहीं, इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ने तरतीब सामने रख दी, तुम ये करो मैं तुम्हें दूंगा। आइए ज़रा चंद रिवायतें सुनिए। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नतें 2 तो सिर्फ सोने की हैं, 100 जन्नतें हैं टोटल, जैसे 7 स्टार है ना, तो 100 स्टार की बात है। सिर्फ समझने के लिए वो है क्या, वो तो अब अल्लाह को पता है। फरमाया कि 2 जन्नतें सोने की हैं, इनके बर्तन और जो कुछ भी वहाँ है सब सोने ही सोने का है, और 2 जन्नतें चांदी की हैं, बर्तन भी और कुल चीज़ें भी। हम भी मैचिंग करते हैं ना दुनिया में, अल्लाह ने भी करवाई है हमारे लिए। इनमें और दीदारे इलाही में कोई हिजाब नहीं, बजुज उस किब्रियाई की चादर के जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के चेहरे पर है, और ये जन्नत अदन में होंगे। क्या पता चला कि जो 4 जन्नतें हैं ना, 2 सोने की और 2 चांदी की, ये लोग हर वक्त अल्लाह के पास रहेंगे। अल्लाह मज्जल न मिनो, इनको अल्लाह से कोई नहीं दूर करेगा। हम बिछड़े हुए हैं ना अल्लाह से, हमारी रूहें तड़प रही हैं, हमें अपने प्यारों से मिलने का इतना शौक नहीं है कि कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए। माँ बाप से मिलने की भी जुदाई नहीं है कि अब दुनिया से चले गए तो क्या करें। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत की तड़प महसूस कीजिए, और वहाँ जाके हमेशा अल्लाह के पास, कितना अच्छा लगेगा। हदीस में आता है कि मोमिन के लिए जन्नत में खैमा होगा, एक ही मोती का बना हुआ, यानी पूरे मोती के अंदर कार्विंग की हुई है, कोई जोड़ नहीं है उसमें, कोई ईंटे नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, मोती को तराश के घर बना हुआ है। इसका तूल 60 मील का होगा, यानी उसकी लंबाई घर की 60 मील है। मोमिन की बीवियां वहीं होंगी जिनके पास वो आता जाता रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे को दिखाई ना देंगी। यदि इतना बड़ा घर है कि एक कोने में बैठा हुआ बंदा दूसरे को नहीं दिख रहा। आपने फरमाया कि जो अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह पर हक है कि इसे जन्नत में ले जाए। इसने हिजरत की हो या अपने वतन ही में रहा हो। लोगों ने कहा फिर हम औरों से भी ये हदीस बयान कर दें। आपने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी राह के मुजाहिदों के लिए बनाए। ये मुजाहिद कौन है? ये आज कुरान के साथ जिहाद करने वाले हैं, जो अल्लाह के दीन की नजरियाती हिफाजत कर रहे हैं, और बाद में फिर सरहदों की। हर 2 दर्जों में इतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान में। ये इस आसमान और जमीन का आपको पता है फासला कितना है? 500 साल का लफ्ज आता है हदीस में। बस जब भी तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस तलब करो, वो सबसे ऊंची और सबसे बेहतर जन्नत है। जन्नतों की सब नहरें वहीं से निकलती हैं, इसकी छत रहमान का अर्श है। फरमाया अहले जन्नत जन्नती बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम आसमान के चमकते दमकते सितारों को देखते हो। एक खास मुकाम है जिसे वसीला कहते हैं, वर्ष के बिल्कुल करीब है। ये जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। आपने फरमाया जब दुरूद पढ़ो तो मेरे लिए वसीला तलब करो। पूछा गया वो क्या है? कहा जन्नत का वो आला मुकाम जो सिर्फ एक शख्स को मिलेगा, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो शख्स मैं होऊंगा। आपने फरमाया कि मुअज्जिन की अजान का जवाब दो जैसे कलेमात वो कहता है तुम भी कहो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे लिए वसीला तलब करो, वो जन्नत की एक मंजिल है जो तमाम मखलूक इलाहिया में से सिर्फ एक शख्स को मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ही इनायत होगी। जिसने मेरे लिए वसीले की तलब की उसके लिए शिफात क़यामत के रोज़ मेरी हलाल हो गई। फिर दुआ करो मैं उसका गवाह बनूंगा। साहबा ने एक दिन आपसे पूछा अल्लाह के नबी हमें जन्नत की बातें सुनाएं। जैसे आपको मज़ा आ रहा है ना, साहबा को भी आता था, तो कहा अल्लाह के नबी बातें सुनाएं। इसकी बुनियादें किस चीज़ की हैं, यदि जन्नत की जो फाउंडेशन है वो किस चीज़ की होगी? फरमाया सोने चांदी की ईंटों की। इसका गारा खालिस मुश्क है, यानी परफ्यूम्ड किस्म की मर्ड है जो उस ईंटों में लगाई जाएगी। इसके कंकर लूलू और याकूत है। इसकी मट्टी ज़ाफरान है। आप कहते हैं एक औंस भी उसका कितना महंगा मिलता है। इसमें जो जाएगा वो नेमतों में होगा जो कभी खाली ना हो। वो हमेशा की जिंदगी पाएगा जिसके बाद मौत का खटका भी नहीं, ना इसके कपड़े खराब हो ना इसकी जवानी ढले। फरमाया जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनके अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है और बाहर का हिस्सा अंदर से। आज की जबान में इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल का। एक अरबी ने पूछा अल्लाह के नबी ये बाला खाने किनके लिए हैं? अरबी पूछ लेते थे, साहबा नहीं पूछते थे, वो चुप करके बस दुआएं मांगते थे। खैर, आपने फरमाया जो अच्छा कलाम करे, खाना खिलाए, रोजे रखे, और रातों को लोगों के सोने के वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करे। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। फरमाते कोई है जो जन्नत का शौक रखने वाला और उसके लिए मेहनत करने वाला हो? वल्लाही जन्नत की कोई 4 दीवारी महदूद करने वाला नहीं। वो तो एक चमकता हुआ बुकाए नूर है और महकता हुआ गुलिस्तान है और बुलंदो बाला पाकीज़ा महल्लात हैं और जारी और सारी लहरें हैं और गुदराए हुए और पके हुए मेवों के खोशे हैं। खुश जमाल, खूबसूरत, खूब पाक सीरत हूरे हैं और बेश कीमत कपड़े, रंगीन रेशमी जोड़े। मुकाम है हमेशगी का, घर है सलामती का, मेवे हैं लदे फदे, सब्जा है फैला हुआ, कुशादगी और राहत है, अमन और चैन है, नेमत और रहमत है, आली शान इस खुश मंजर कुन और हवेलियाँ हैं। ये सब बातें सुनकर लोग पुकार उठे, अल्लाह के नबी हम सब इस जन्नत के मुश्ताक और इसके हासिल करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आपने फरमाया फिर इंशाअल्लाह कहो, तो लोगों ने इंशाअल्लाह कहा। अब मैं और आप भी क्या कहते हैं? हमें कितना शौक है, इतनी चीज़ें बिन महंगे मिल जाएं। ये कोई मेहनत है जो हम कर रहे हैं? 4 दिन का सफ़र है, इसके बाद जो मिलने वाला है वो कितना बड़ा है, और इनमें ही ना खो जाएं। जब ये सब मिल जाएंगी तो अल्लाह जन्नतियों को पुकारेगा, या अहलल जन्ना, वो पुकार का जवाब देंगे, लब्बैक रब्बना वसादैक, ए हमारे रब हम हाजिर हैं, हमारी ये खुशबख्ती है कि आपने पुकारा, वल खैरु फी यदैक, और खैर सारी आपके हाथ में है। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, हल रजी तुम, क्या तुम मुझसे खुश हो? वो जवाब देंगे, अल्लाह हम खुश क्यों ना हो, तूने तो हमें वो कुछ दिया जो मखलूक में किसी को ना दिया, और तूने हमारे चेहरों को सफ़ेद कर दिया, हमें आग से बचा लिया। अल्लाह ताला फरमाएगा, लो फिर आज मैं तुम्हें इससे भी आला और अफसल चीज़ अता करता हूँ। वो कहेंगे, अल्लाह इससे भी अफसल चीज़ कोई हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुम्हें अपनी रजामंदी देता हूँ, आज के बाद मैं कभी तुमसे नाखुश नहीं होऊंगा। सोचिए, वला नस्खतु अलैकुम अबदा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा आज के बाद तुम पे। दुनिया में जिसको ये मुकाम मिल जाए उसके लिए दुनिया भी जन्नत है। अल्लाह की रज़ा से दुनिया मिले तो नेमते हैं, और नाराज़गियों से मिले तो निराजाब और डिप्रेशन है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इसके काबिल बना दें। उस जन्नत को पाने वाला कभी सो नहीं सकता, बेहरकत नहीं रह सकता, हमारे कदम चलेंगे इसकी तरफ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
चलिए आगे चलते हैं। अब बिल्कुल एकदम टॉपिक पलट रहा है। जन्नत के तस्करों के बाद बात का पलटना बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे कि हमें उस जन्नत से बुला के फिर इस दुनिया में रख दिया गया। मुनाफिकों और मोमिनों के हालात बयान होने के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहान तआला हुक्म देते हैं, बराह रास्त यानी बड़ा दो टोक अंदाज है, इसमें क्या फरमाया? आयत नंबर 73, या अय्युहन नबीयु, ए नबी, अल्लाह के नबी को पुकारा गया और इस अंदाज से आपको कम ही पुकारा जाता है, क्या कीजिए? जाहिदिल कुफ्फारा, जिहाद कीजिए काफिरों के साथ, और वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों से क्या करें? इसको भी साइलेंट पे कर दें, लेकिन अगला हिस्सा पढ़ें, वग़लुज़ अलैहिम, और सख्ती कीजिए इनसे। अंदाज बड़ा दो टोक है, बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में ये आयत सूरत तहरीम में भी आएगी, 28वें पारे की आखिरी सूरत है, लेकिन यहाँ राह रास्त इस आयत को पढ़े तो दो तरह से इसका आप तर्जुमा करेंगे। पहला तर्जमा क्या है कि नबी जिहाद कीजिए काफिरों और मुनाफिकों के साथ और इन पर सख्ती कीजिए, ठीक है। दूसरा एक और एक तर्जमा जो कुछ लोगों ने किया वो क्या बनता है कि अल्लाह के नबी काफिरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों पर सख्ती कीजिए, ठीक है। ये दोनों जुमले हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो इंशाल्लाह दोनों बातें समझ आ जाएंगी। मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था, सब काफिर ही थे, और उस वक्त निफाक की कोई सेंस भी नहीं थी, क्योंकि ईमान कबूल करने पे तो तकलीफें आती थी, तो कोई झूठे ईमान का दावा क्यों करता, ठीक है। लिहाजा मक्का में तो किसी किस्म का कोई इंट्रैक्शन मुनाफिकों से ना हुआ। मदीना में आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जब मुनाफिकों से पेश आया तो अमली तौर पर हम देखते हैं कि पूरे मदनी दौर में एक भी जंग मुनाफिकों के खिलाफ नहीं लड़ी गई। गज़वा बदर से तबूक तक मुशरिकीन ने मक्का से लड़े, अरबों के जो बद्दू लोग थे उनसे लड़े, यहूद से जंगें हुईं, आपका रास्ता रोकने वालों से हुईं, हिरकल को चैलेंज किया गया, गज़वा मूता, जंगे मूता, जंगे यरमूक, ये सारी आप पढ़ते हैं, लेकिन एक भी जंग मुनाफिकों से नहीं हुई। तो बस लोग कहते हैं कि यहाँ मुनाफिकों से जिहाद से क्या मुराद है, तो असल बात देखेंगे तो बीच में लफ्ज़ जिहाद निकलेगा। ہم بعض دفعہ لفظ جہاد کے ساتھ ہی قتال سے اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، تو یہاں جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے، قتال سے نچلے درجے کی جد و جہد جس کو آپ دون القتال کہیں گے، یعنی منافقوں کی یہ جو پیش گرمیاں ہیں، پیش کشیں ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف جو مشکل حالات پیدا کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ دوڑ دھوپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ منافق مارے آستین ہے، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ اسلام کی صفوں میں گھس کے اسلام کو توڑنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ انفرادی طور پر یا چھوٹے لیول پر کوششیں کیجئے کہ ان کا زور ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی اس سے بڑھ کے ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جائے کہ یہ منافق نفاق میں اتنے پختہ ہو جائیں کہ کافروں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے آ جائیں، تو پھر آپ ان کو چھوڑیں گے تو نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو کوئی منافق جس قسم کا معاملہ آپ کے ساتھ کرے، آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں، یہ مراد ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ دو ٹوک بات ہے، ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چار تلواریں دے کر بھیجا گیا۔ پہلی تلوار مشرکین مکہ کے خلاف، وہ تو آپ نے پیچھے پڑھی لیا کہ کیسے کتنی لمبے چوڑے طریقے پہ ہوئی، اور اس کا ذکر سورۃ توبہ کے شروع میں آیا، فیضن سلخ الاشخر الحرم فقتل المشرکین، کہ جب یہ حرمت کے چار مہینے گزر جائیں گے تو مشرکوں کو ماریے۔ دوسری تلوار آپ کو جو دی گئی اہل کتاب کے خلاف دی گئی، قاتل الذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے لڑائی کیجئے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے کو حرام نہیں جانتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، یہ بھی آیت سورۃ توبہ میں گزر گئی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پہ تیار ہوں۔ تیسری تلوار آپ کو منافقوں کے خلاف دی گئی، جس کا تذکرہ یہاں آ گیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، اور چوتھی تلوار آپ کو باغی، یعنی باغی جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف دی گئی، اس کا تذکرہ آگے ہم سورہ حشر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ، کہ باغیوں سے اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ وہ پلٹ کر اللہ کے احکامات کو نہ مان لے۔ تو پتہ کیا چلا کہ منافق جب تک اپنا نفاق دل میں رکھیں ان کو کچھ نہ کہو، لیکن جب اپنا نفاق ظاہر کریں تو حالات اور مواقع کے مطابق آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اس کے ساتھ یہاں جہاد کے ساتھ زبانی جہاد کی بات بھی کی گئی کہ زبان سے ان کو برائی سے روکو، نرمی نہ کرو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ منافقوں کے ساتھ یہاں زبانی جہاد مراد ہے، اسی طرح سے جہاد کسے مراد یہاں ایفرٹ ہے، نفس کے ساتھ بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، تو ہر چیز کو ایک جگہ لے۔ اس کے ساتھ واقعات بھی ہیں جس کی اس وقت ہمیں ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، لیکن آج کے دور میں اب ہم کسی کو منافق کہہ کر اس کے خلاف تلواریں نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے۔ بس اپنے دین کو پیش کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کفر پہ اور نفاق پہ مرنے کی بجائے ان کے دلوں کو بدل دے۔ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کی جگہ ہے پلٹنے کی بری۔ آیت 74 جو آخری آیت ہے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ کون سی بات ہے؟ اس کی ڈیٹیلز 28 پارے میں سورت منافقون میں آئے گی۔ یہاں بس اتنا جان لیجئے کہ تبوک سے واپسی کا سفر تھا، عبداللہ بن ابئی کے منہ سے ایک نوجوان نے ایک بات سنی جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کہی تھی۔ صحابی نے آ کر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، آپ نے عبداللہ بن ابئی کو بلایا، بعض پرس کی تو مکر گیا کہ یہ تو ایسی میرے خلاف بات کر رہا ہے، آپ ایک بچے کی بات مان رہے ہیں میرے خلاف۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں مان رہا، حالانکہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے تو کفر کا کلمہ کہا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابئی اپنی بات پر مکر گیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو سچا قرار دیا اور اس کا نفاق کھول دیا۔ فرمایا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کفر کر چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد۔ کون؟ عبداللہ بن ابئی اور اس کی ٹولی۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو حاصل نہ کر سکے۔ ہم کیا ہوتا ہے؟ ارادہ، ہم، یہ ہے اشارہ اللہ کے نبی پر قتل کے حملے کا۔ تبوک سے واپسی کے سفر میں پہاڑی راستے سے گزرتے ہوئے، ایک تنگ گھاٹی تھی، وہاں سے ایک وقت میں صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی قافلے سے علیحدہ تھے، آپ جب اس گھاٹی سے گزرنے لگے آپ کے ساتھ صرف دو صحابہ تھے، حذیفہ بن جمان اور عمار بن جاسر۔ جب اس تنگ جگہ سے آپ گزرے تو منافقین رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے اپنے چہروں پہ نقاب باندھے ہوئے تھے، ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شہید کریں، لیکن آپ کے جان نثار صحابہ نے آپ کو وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا اور ان کو مار بھگایا، اور وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے ان دونوں صحابہ کو ان حملہ آوروں کے علاوہ باقی تمام منافقوں کے نام بھی بتا دیے، کیونکہ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت تھا، آپ دوست اور دشمن کا فرق بتانا چاہتے تھے، اور آپ نے تاکید کی کہ اب یہ نام تم کسی کو نہ بتانا، اس کو راز رکھنا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن جمان کو صاحب سر رسول کہتے ہیں، نبی کے ہم راز۔ حضرت عمر ان کے پیچھے پھرا کرتے تھے، حذیفہ بس اتنا بتا دو کہ ان لوگوں میں میرا نام تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ جس کا نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہ پڑھتے، حضرت عمر بھی نہ پڑھتے کہ ہو نہ ہو یہ شخص منافق ہوگا۔ ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم اس دور میں ہوتے؟ اللہ کی پناہ، شکر ہے اس کا کہ ہم اس دور میں نہیں ہے۔ تو اس واقعے کی طرف ادھر اشارہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ۔ یہ لوگ اپنے عناد کا یا اپنی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، مگر صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مدینہ غریب بستی تھی، کاشتکار تھے، کسان تھے، لیکن ہر وقت کے مال غنیمت اور زکوٰۃ اور صدقات سے ان کو دولت ملی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اب یہ حال ہے کہ اللہ اور اس کے دین کی بدولت جو ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَ اللَّهُمْ، اب بھی اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ پیٹ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت دردناک عذاب دے گا۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پوری دنیا میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دے دی کہ ان سب کو آج دنیا میں اس کا پتہ چل جانا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ ہمیں اسلام یا نبی کے بارے میں یا قرآن کے اور اس دینداروں کے بارے میں بولنے اللہ نہ بنائے کہ جو ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے، اور اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ہمارے دلوں کے نفاق پتہ چلے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے نفاق کو ختم کر دے۔ کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔